खंड तीसरा, अध्याय पहला। हिमालय मुझे पुकार रहा था और मैं उसके पास जाने के लिए लालायित था। अगले दिन मैं रेलवे स्टेशन के मैले प्लेटफॉर्म पर बैठा उत्तर दिशा की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। वहां मैं श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई पुस्तक पढ़ने लगा और मुझे ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उसमें बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन द्वारा लिखी हुई प्रस्तावना थी। उन्होंने लिखा, हर कोई श्रीकृष्ण को खोज रहा है। कुछ लोग ये नहीं जानते कि वे खोज कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे ऐसा कर रहे हैं। श्रीकृष्ण भगवान हैं, संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, भूत, वर्तमान और भविष्य में सभी कारणों के कारण। चूंकि ईश्वर अनंत हैं, इसलिए उनके अनेक नाम हैं। अल्लाह, बुद्ध, यहोवा, राम, सभी श्रीकृष्ण हैं, सभी एक हैं। मैं विश्व के विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर रहा था और मैंने पाया कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ईश्वर के आधार पर एकता स्थापित करने वाली इस भावना को पढ़कर मैं विस्मित भी हुआ और प्रसन्न भी। कुछ देर और पढ़कर मैंने पुस्तक को वापस अपने थैले में रख दिया। स्टेशन पर मुझे लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति मिले। उन्होंने साफ सुथरी सफ़ेद सूती पैंट, कमीज और नेहरू टोपी पहनी हुई थी। उनके गहरे रंग के चेहरे पर बचपन में हुए चेचक के दाग थे। उनका नाम माधव था और वो रेलवे में एक निरीक्षक थे। माधव ने मुझे अपने गुरु से मिलने के लिए मना लिया। हम बस द्वारा बम्बई से पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ घंटे पश्चात हम गणेशपुरी नामक एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा, गुरुजी से मिलने से पहले तुम्हें गर्म पानी के इन चश्मों में स्नान कर शुद्ध होना होगा। हम तीन छोटे कुंडों के निकट पहुंचे, जिनमें गंधक मिला हुआ गहरा धुंधला जल धीरे धीरे उबल रहा था। दर्जनों स्थानीय लोग जोर जोर से बातें करते हुए धक्का मुक्की कर रहे थे और दर्जनों अन्य स्नान कर रहे थे। मैंने धीरे से धुआं उठते स्याह जल में प्रवेश किया, जो तेल की भांति मेरी त्वचा को चिपक गया। कुछ समय पश्चात मैं उस जलते पानी और अम्लीय गंध का आदि हो गया और गर्दन तक उसमें उतर गया। जल की उष्णता ने मेरे तनमन में प्रवेश कर नवीन प्राणों का संचार कर दिया। तभी माधव ने पुकारते हुए कहा कि गुरुजी से मिलने का समय हो गया है। कपड़े पहनने के पश्चात वे मुझे ईंटों से बने एक छोटे मंदिर में ले गए। एक मेहराबदार द्वार से भीतर प्रवेश कर मैंने स्वयं को एक बड़ी श्याम श्वेत फोटो के सम्मुख पाया। वो एक थोड़े से भारी व्यक्ति का चित्र था, जिनका सिर घुटा था और तन पर केवल एक लंगोटी थी। उनके गोलाकार चेहरे पर पैनी आँखें, हल्की सफ़ेद दाढ़ी और उभरी हुई गाल की हड्डियां थी। माधव ने बताया कि ये उनके गुरु नित्यानंद बाबा का चित्र है, जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। उनकी समाधि में उनकी आत्मा की उपस्थिति का आभास बहुत ही वास्तविक था। दियों से प्रकाशित और मोगरे की धूप से सुगंधित वो समाधि पीले एवं नारंगी रंग के गेंदे के फूलों से सजी थी। चारों ओर नित्यानंद बाबा के अनुयायी भगवान के नामों का एक स्वर में कीर्तन कर रहे थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे, वही मंत्र जिसे हिमालय में गंगा नदी ने मुझे प्रदान किया था और जिसे बम्बई में श्रील प्रभुपाद ने गाया था। मेरी देह सिहर उठी। नित्यानंद बाबा को महाराष्ट्र और कर्नाटक में लाखों लोग पूजते हैं। माधव ने मुझे विस्तार से उनके जीवन, शिक्षाओं और चमत्कारों का विवरण दिया। ये 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की बात है। एक निर्धन स्त्री जब जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो उसे जंगल के एक गहन भाग से कौवों के कांव कांव करने की तीव्र ध्वनि सुनाई दी। वहां उसने एक नवजात शिशु को पत्तों पर लेटा पाया। उसने उस बालक को एक बांझ स्त्री को सौंप दिया, जो एक धनी ब्राह्मण अपने दत्तक परिवार को त्याग कर वैरागी नित्यानंद बाबा बन गया। नित्यानंद बाबा ने दूर दूर तक पैदल भ्रमण किया और सदैव जरूरतमंदों की सेवा करते हुए लोगों के हृदयों को ज्ञान से प्रकाशित किया। अनेक वर्षों पश्चात वे यहां गणेशपुरी में आ बसे। पार्श्व में हो रहे कीर्तन के बीच जब मैं उनकी समाधि में बैठा ध्यान कर रहा था तो मुझे नित्यानंद बाबा की भाव विभल कर देने वाली उपस्थिति का आभास हुआ। मानो वे मुझे आश्वासन दे रहे थे कि उनका आशीर्वाद मुझ पर है। कुछ दिनों पश्चात मुझे नित्यानंद बाबा के एक शिष्य के पास ले जाया गया जो निकट ही एक आश्रम बनवा रहे थे। सड़क के पास बन रहे उस छोटे से भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। जैसे ही द्वार खुला, एक मंद तथा सम्मोहित करते हुए स्वर में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजने लगा। भीतर उनके लगभग 25 भारतीय और विदेशी शिष्य एक स्वर में गा रहे थे और मधुरता से तंबूरे बजा रहे थे। कीर्तन समाप्त होने के पश्चात वे सभी प्रांगण में आ गए। मैं उन्हें देखता हुआ प्रतीक्षा करने लगा। गुरुजी के प्रवेश करते ही सभी शिष्यों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी 63 वर्ष के थे। उनका रंग गहरा था, आंखें गहरी और भूरी, दाढ़ी और बाल छोटे एवं वस्त्र भगवे थे। उन्हें देखते ही सभी अनुयायी आनंद से खिल उठे। मैंने पूछा कि वो कौन थे। स्वामी मुक्तानंद, मुझे उत्तर मिला। अपने चश्मे के पीछे से मुझे ध्यानपूर्वक देखते हुए स्वामी जी ने एक अनुवादक के माध्यम से हम सबको संबोधित किया। जब मैं 15 वर्ष का था तो साधु का जीवन यापन करने के लिए मैंने अपने संपन्न परिवार का परित्याग कर दिया। सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण करने के पश्चात अंततः मैं अपने गुरुदेव नित्यानंद बाबा से मिला। अपनी दाहिनी मुट्ठी को बाई हाथेली पर मारते हुए उन्होंने जोर से कहा, बाबा ने मेरे गर्व को ऐसे चकनाचूर किया जैसा कोई नहीं कर पाया था। यहां पर वे उसे बात का वर्णन कर रहे थे जिसे सोच सोच कर मैं चिंतित था, किस गुरु या पक्ष का चुनाव करूं और क्यों। सभी श्रोताओं सहित मैं उनके प्रत्येक शब्द को कान लगाए सुन रहा था। शक्तिपात दीक्षा, कुंडलिनी शक्ति नामक एक दिव्य ऊर्जा को मेरुदंड के आधार से जागृत करती है। मेरुदंड के 7 चक्रों से ऊपर उठती हुई कुंडलिनी सिर के ऊपर पहुंचती है, जहां से वो परम में विलीन हो जाती है। कुंडलिनी जागृत करने का एक ही सुनिश्चित मार्ग है, स्वामी मुक्तानंद ने आगे कहा, और ऐसा तब होता है जब एक सिद्ध गुरु मंत्र देकर अपनी शक्ति शिष्य को प्रदान करता है। अंत में उन्होंने कहा, एक शराबी जितना शराब से आसक्त होता है उससे भी अधिक आसक्त तुम्हें अपने मंत्र से होना चाहिए, इसे कभी मत भूलना। एक बार जब मैं स्वामी मुक्तानंद के साथ सड़क के किनारे खड़ा था तो एक खतरनाक कुत्ता अपने पैने दांत दिखाकर गुर्राते हुए हमारी ओर झपटा। लोग चिल्लाते हुए तितर भितर हो गए। स्वामी जी ने दृष्टिमात्र से उस कुत्ते को शांत कर दिया और उसने मिमियाते हुए सिर झुका लिया। कुत्ते को आशीष देकर वे मेरी ओर मुड़े और एक अनुवादक के माध्यम से बोले, मैंने देखा है कि तुम एक सच्चे साधु हो, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें शक्तिपात की दीक्षा दे सकता हूं। टाट वाले बाबा, नागा गुरु और ऐसे अनेक लोगों की छवि मेरे मानस पटल पर उभर आई जिन्होंने इस प्रकार से मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा था। धन्यवाद स्वामी जी, अचंभित होकर और सम्मानित अनुभव करते हुए मैंने उत्तर दिया, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि मैं किसी गुरु से तब तक दीक्षा नहीं लूंगा जब तक मैं पूर्णतः विश्वस्त न हो जाऊं कि मैं उन्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। वहापोह में मैं कुत्ते को सहलाने लगा। मेरा एक मन सोच रहा था कि मैं उनके इस उदार प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। मैं आपकी दया का पात्र नहीं हूं, किंतु मैंने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है। मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा की सराहना करता हूं, मेरी आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो भयंकर कुत्ता बार बार मेरा हाथ चाटने लगा, मानो उनके आशीर्वाद की पुष्टि कर रहा हो। माधव ने जोर दिया कि मैं गोवा जाऊं, जहां का मौसम मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। वे मेरे लिए जहाज की टिकट खरीदने के लिए भी तैयार थे। मुझे लगा कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है। मैं उनके साथ बंबई के बंदरगाह पहुंचा और खचाखच भरी एक नौका में चढ़ गया, जो अरब सागर के तट से होती हुई 250 मील दक्षिण में ले गई। दिन भर की शांत यात्रा के पश्चात मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। वो स्थान एक स्वर्ग के समान था। दूर दूर तक मुलायम रेतीले तट फैले थे। समुद्री नमक के महक से भरी पवन मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। 16वीं शताब्दी के आरंभ में गोवा शहर पुर्तगालियों के एशियाई साम्राज्य का मुख्यालय था। उस समय एक ईसाई पादरी सेंट फ्रांसिस जेवियर ने हजारों स्थानीय लोगों को ईसाई बना दिया। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण कर पुर्तगाली सेना को पराजित किया और इसे स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना लिया। तट पर आकर मैंने दूर तक फैली दूधिया रेत, स्फटिक जैसे समुद्री जल और नारियल के अनेक वृक्ष देखे। समय व्यतीत करने के लिए मैं कालांगुट तट पर गया। ये पश्चिमी पर्यटकों का मनपसंद विश्राम स्थल है, जहां वे सस्ते घर लेकर रहते हैं। तट पर घूमते हुए मैंने देखा कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का चुंबन और आलिंगन कर रहे थे। जोर से रॉक एंड रोल का शोर मच रहा था और खुलेआम नशापान हो रहा था। ये वही पुराना दृश्य था जिसे मैं यूरोप छोड़ आया था, किंतु अब ये इतना अजनबी लग रहा था मानो किसी पिछले जन्म की बात हो। इन सबसे उदासीन मैं सागर के किनारे रेत पर चलता रहा। मैंने स्वयं को मन ही मन उनकी निंदा करते पाया, मानो मैं उनसे श्रेष्ठ था। ये विचार मेरे अहंकार की पोल खोलने लगे। मैं प्रार्थना करने लगा कि मैं अन्यों में दोष देखने के इस अवगुण से मुक्त हो सकूं, लेकिन यह बहुत कठिन था। वन में पशुओं के साथ रहना इससे कहीं अधिक आसान था, क्योंकि वे मेरी खामियों को इस प्रकार उजागर नहीं करते थे। लगभग 1 किलोमीटर आगे मुझे नशेड़ियों का एक झुंड मिला। वे सभी विदेशी थे और तट पर इधर उधर पड़े अपनी बाहों में नशीली सुइयां खोंप रहे थे। वे इतनी दूर धरती की सर्वाधिक रम्य स्थानों में से एक गोवा जैसे स्थान पर आए किस लिए? केवल नशे के कष्टों को भोगने के लिए? अपनी गति बढ़ाते हुए मैं तट के अंत पर खड़ी एक छोटी पहाड़ी तक आया। मैं उसकी चट्टानों पर चढ़ने लगा और हांफते हुए उसकी दूसरी ओर पहुंचा। एक स्वर्गीय दृश्य मेरे सम्मुख प्रकट हो गया। सैकड़ों गज तक सफेद मखमली रेत फैली थी। नारियल के पेड़ों के झुंड हवा में झोंके खा रहे थे और दूर दूर तक एक भी मनुष्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। आने वाले 1 सप्ताह तक यही मेरा घर बन गया। 7 दिन तक मैं नारियल के एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान साधना, अध्ययन और प्रार्थना करता रहा। कुछ गरीब मछुआरों को छोड़कर जो प्रतिदिन प्रातः समुद्र में अपनी नौकाएं लेकर जाते थे, वो स्थान निर्जन था। प्रतिदिन भोजन के लिए मैं झुके हुए एक नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे हिलाते हुए एक नारियल गिराता और उसे बार बार एक चट्टान पर मारकर तोड़ कर लेता। स्नान के लिए सामने विशाल सागर था और बिस्तर के लिए सितारों से भरे आकाश के नीचे खुला रेतीला तट, जिस पर मैं पसर जाता। एक दिन मैं नगर की ओर गया। वहां अनगिनत नारियल के पेड़ों के बीच मैंने मिट्टी और नारियल के सूखे पत्तों से बनी कुछ झोपड़ियां देखी। वहां के निवासी, जिनमें से अधिकतर ईसाई बन चुके थे, अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए मछुआरों का काम करते थे। पूंजी के नाम पर उनके पास एक नाव, 2 चप्पू और एक जाल के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पुरुष समुद्र में कड़ी धूप में परिश्रम करते, जिसके कारण उनमें से अधिकांश के चेहरों पर ऐसे धब्बे उत्पन्न हो गए थे जो त्वचा के कैंसर के समान प्रतीत हो रहे थे। किंतु पेट भरने के परिश्रम में वे इतने व्यस्त थे कि उनके पास इन चीज़ों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। मैंने सोचा कि कैसे ईसा मसीह ने अपने आरंभिक शिष्य मछुआरों में से चुने थे और फिर उन्हें निर्देश किया कि वे सागर से मछलियों को नहीं अपितु भौतिक संसार रूपी भवसागर से मनुष्य को बाहर निकालें। एक अन्य दिन जब मैं तट पर चल रहा था, मैंने एक नन्ही सी मछली को रेत पर फड़फड़ाते हुए पाया। एक लहर उसे तट पर बहा लाई थी। मछली की तड़पन और भय देखकर मैं दयाद्र हो उठा। आखिरकार उसमें और मुझमें अधिक अंतर नहीं था। मैंने उसे पुनः समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया, किंतु जितनी बार भी मैं उसे हाथ में उठाता वो घबराकर बाहर कूद जाती। वो इतनी भयभीत थी कि मुझे अपने हितैषी के रूप में पहचान नहीं पा रही थी। अंततः मैंने उसे अपनी अंजुलि में बंद कर सागर में फेंक दिया, किंतु मेरी प्रसन्नता क्षणभर ही रह पाई, क्योंकि जब अगली लहर तट पर आकर सागर की ओर वापस लौटी तो वो उस नन्ही मछली को पुनः रेत पर तड़पता हुआ छोड़ गई। मैंने फिर उसे सागर में फेंका, किंतु फिर से अगली लहर उसे रेत पर मरने के लिए छोड़ गई। अगली बार बड़ी कठिनाई से मैंने उसे अपनी हथेलियों में पकड़ा और सागर में गर्दन तक प्रवेश कर पूरी शक्ति लगाते हुए उसे अंदर फेंक दिया। बाहर आकर मैं तब तक अनेक लहरों को ध्यान से देखता रहा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो गया कि वो सुरक्षित है। कुछ आगे चलकर मैंने मछुआरों के एक दल को नाव से रेत पर अपना जाल खींचते हुए देखा। उनके जाल में सैकड़ों वैसी ही नन्ही मछलियां थीं जो जीवन के लिए छटपटा रही थीं, किंतु दुर्भाग्यवश उनका गंतव्य खौलते तेल की कड़ाही थी। क्या कर सकता था मैं? मैंने संजीदगी से सागर की ओर देखा और विचारों में डूबा वहां से चल दिया। हम सभी इन मछलियों के समान हैं जो दिव्य चेतना के सागर से विलग हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान से अलग रहना वैसा रहना है जैसे एक मछली द्वारा जल से अलग होकर सुखी रेत पर आनंद लेने का प्रयास करना। साधुजन जानते हैं कि अपनी मूल आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करके ही हम पुनः सच्चे आनंद के सागर में प्रवेश कर सकते हैं। मात्र एक जीव को भी इस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचाने के लिए वे अथक प्रयत्न करते हैं, लेकिन माया का जाल हमारे मन को हर लेता है और हमें अपने सच्चे आत्महित से विमुख कर देता है। जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ की तो मेरा विचार था कि मैं विभिन्न मार्गों और शिक्षकों से यथासंभव सीखने का प्रयास करते हुए प्रत्येक मार्ग से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली शिक्षा को ग्रहण करूंगा। 1960 के दशक में यह विचारधारा पश्चिम में बहुत प्रचलित थी, किंतु भारत आने पर मुझे इसकी खामियां दिखने लगीं। मैं इस विचारधारा वाले अनेक आध्यात्मवादियों से मिला था, किंतु उनके साक्षात्कार अस्पष्ट प्रतीत होते थे। दूसरी ओर जिन लोगों में मैंने आध्यात्मिक प्रगति देखी उन सभी ने स्वयं को एक मार्ग के प्रति समर्पित किया हुआ था। मुझे समझ में आने लगा कि मेरे द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास जाने के विचार की अपनी परिसीमाएं हैं। मुझे डर था यदि मैं किसी एक पंथ में दीक्षा लेता हूं तो मैं बाकी पंथों से अलग हो जाऊंगा। फिर भी मैं जानता था कि आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी एक का तो चुनाव करना ही होगा। ऐसा न करना पीड़ादायक बनता जा रहा था। किंतु क्या है मेरा पथ और कौन है मेरे गुरु? कैसे और कब मैं इन्हें स्पष्ट रूप से जान पाऊंगा? अब तक अनेक शिक्षकों ने मुझे विभिन्न मार्गों और अनुभवों से बोधित किया है जिसके लिए मैं योग्य नहीं था। मुझे उन सभी में आध्यात्मिक सुंदरता दिखाई देती है। जीवन के इस चौराहे पर मैं किस मार्ग का चुनाव करूं? उस रात मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और सो गया। आधी रात को जब मैं उठा तो काले आकाश में नवचंद्र चमक रहा था। वो नवचंद्र एक झिलमिलाते हुए सितारे को आलिंगन दे रहा था। ये इस्लाम का चिन्ह है, ईश्वर के प्रति समर्पण का चिन्ह। मैं आश्चर्य से उसे निहारता रहा। मेरे हृदय को आश्वासन मिला और मैंने इसे एक संकेत माना कि जिस रहस्य पर मैं विचार कर रहा था आने वाले समय में वो स्वतः ही मेरे सम्मुख उजागर हो जाएगा। यहां पर तीसरे खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है।